Hare Krishna. Hare Krishna. So it's a great fortune to be with us. We have with us His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. I would like to give a brief introduction of Maharaj before we get to hear His nectarian class on Vrindavan Bhajan. Maharaj is born in 1967, December 31st, and was raised in a traditional Gaudiya Vaishnav culture in Bangladesh. Maharaj came in contact with ISKCON in 1994, and his very first meeting with his spiritual master, he decided to dedicate himself fully to this movement. Thus, he joined as a full-time devotee in 95 in Mayapur, and he got Harinam Diksha in 1996, Brahman initiation in 98, Sannyas initiation on the auspicious occasion of Gaur Purnima 2015 by his spiritual master, His Holiness Bhaktacharya Swami Guru Maharaj. He served as the head of the medical department in Mayapur temple from 96 to 2001 and as a Brahmachari counselor also. In the year 2000, he completed the Bhakti Shastri course from MIH University. In year 2001, he was made the vice president of ISKCON Calcutta and he served there till 2004. In 2004, Maharaj, His Holiness Bhaktacharya Swami Guru Maharaj, he requested him to come to Ujjain for making a wonderful temple. And in 2006, GBC gave him ISKCON Global Excellency Award for a significant contribution in opening a new ISKCON project in Ujjain with marvelous hand-carved marble temple of Rishi Radha Madan Mohan. It is one of the temples which has come up in very short period. Maharaj, six months of construction period was? 9 months, 20 days. I think it is record-breaking in the ISKCON world. Usually, ISKCON constructions go on for 5, 6, 10 years. In 9 months, 20 days, Maharaj completed a... And it's a very beautiful temple hall. Very beautiful deities and beautiful devotees. And there they have also Ayurvedic clinic, Goshala, guest house, many other facilities. So he has served there in that capacity till 2011. He has also... he has a very active involvement in preaching to youth. We also as youth, Maharaj came to Kharagpur and it was a very special time always. Whenever we went to Calcutta, one time we went to Calcutta to serve as Kharagpur is like near to Calcutta. We thought we will serve in Calcutta temple. So we were invited by Maharaj that please come to Calcutta when Maharaj was there and you can get to serve. So when I went there, Revati, Tribhu, I and all. So we asked Maharaj, how can we serve? So he said, yes, you come with me. And then he took us to all Prabhupada places. So he served us, we didn't serve him much. Actually, Maharaj is a very loving personality. So he preaches to youth, congregation. He preaches in English, Hindi, Bengali, in Bangladesh, South Africa, and many other parts of the world apart from India. As a sannyasi, he visits many villages. Maharaj has a project of... making 100 villages all over Ujjain into Hare Krishna devotees very nicely. He regularly, even when I had gone to Ujjain, so I came to know that Maharaj's leg is broken. He had a fracture and all. But still he went in fractured leg for bus party. I was like, this is the zeal of a real missionary personality. So Maharaj is also regularly contributing to Sankirtan buses through distribution of Prabhupada books. And he conducts many preaching programs. After getting awareness of one specific desire of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to have student hostels to guide them in Krishna consciousness, Maharaj established Bhakti Siddhanta Chhatravas, which is like spiritual student hostels to preach Krishna consciousness effectively to the youth. Currently around 18 such youth preaching centers are effectively functioning in his guidance to propagate Krishna consciousness. And many gem-like devotees, they have got in touch with him by youth preaching efforts. And they are now holding major services like Vrajendra Krishnapu is taking care in Ujjain temple. We have Chittari Krishnapu who has come here. And many other devotees, Dhir Gaur Prabhu, many other devotees who got in touch with Maharaj and thus became very deeply inspired to dedicate their life to Srila Prabhupada. We have also Vamsidhari Prabhu, Vrajendra Krishnapu's batchmate, he is taking care of Baroda temple and many wonder, he is assisting Vasugosh Prabhu. Like that, like we send devotees from Pune to different temples. Maharaj, Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, they all also, they send devotees to different temples. So now in Bhuvaneshwar also, there are devotees. Like that, actually, they have a great heart to make many temples of Prabhupada flourish in the service to Prabhupada. And Maharaj recently, 1 year back, Maharaj was ordered by Srila Bhakti Charu Maharaj to go to Orlando in America, where Bhakti Charu Maharaj wants a place where cows can be protected, because there's a lot of atrocities on the cows happening. So they have a 117 acre land where cow protection effort and, you know, all those farm community kind of situation is to be taken care. And there are only 10 devotees, and Maharaj personally cooks, gardens, purchases items. He's like very simple personality, but so deep in Vaishnavism. So here devotees are hankering for his association, but very kindly he accepted to come here for 3 days in a very short trip in India. He has a very short trip of India. In that also he spared 3 days for Pune temple. We are very, very grateful. Let's welcome him. We have been hearing on these sessions Vrindavane Bhajan from him for the last 2 days, and we'll continue the same. Let's welcome him to our youth program, Sangha, by three times loudly chanting, Hari Bol! Hari Bol!
Om Ajnanati Mrandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Shapadantikam Mandiyaham Shri Gura Shri Jita Padakamulam Shri Gurun Vaishnavangashtam Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Shajivam Swadhaitam Sabudhutam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitam Shah Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Srinavadi Pashatvati Shatari He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastati Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vishwabhanusate Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarupascha Kripashindapaivacha Patitanam Pavanibha Vishnavibha Namami Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivashadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. We were discussing Prabhupada Bengali song Vrindavana Bhajan. Prabhupada wrote this song in Vrindavan in 1959. So it was continued in Hindi. Should you continue in Hindi?
Hare Krishna. Are you all comfortable with Hindi? Anyone not comfortable with Hindi? We had a series of recordings in Hindi only. So, and Hindi and Bengali match.
So as we are discussing in Hindi, so we should continue in Hindi. Prabhupada Vrindavane Bhajan गान 27 गान लिखा है. हम वहाँ धारावाहिक रूप में चर्चा कर रहे थे. अभी 14 नंबर गान से चालू करेंगे. प्रभुपाद वर्णना कर रहे थे किस तरह जीवात्मा कृष्ण को भूलकर भौतिक जगत के भोग करने के कारण बद्ध हो गया, और भौतिक जगत में फंसने के कारण माया के कारण उन्हें दुख भोग कर रहे, और माया के कारण दुख करने के भोग करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे दुख है, उसको सुख मानते हैं. दुख सागर में हबुडुब खा रहा है फिर भी सोचते हैं मैं सुखी हूं. इस तरह आदमी दुख कष्ट भोग रहा है, लेकिन भोगते भोगते ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरु कृष्ण का कृपा से जब भक्ति प्राप्त करते हैं, और वो जो भक्ति प्राप्त कर देता है भौतिक जगत का जो जो भोग करने के वासना उसको छोड़ देते हैं, तो वो भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो सुख है इनमें से ज्यादा सुख कोटि गुण सुख करोड़ गुण सुख भगवत धाम में है, और वहाँ का सुख नित्य है, यह का सुख अनित्य है, क्षणिक टेम्पर वहाँ का परमानेंट है. वहाँ सारे राष्ट्र का खान है. तो ये चीज समझने के लिए हमें भगवत गीता का ज्ञान उपलब्ध करना बहुत जरूरी है. भगवत गीता में ये वर्णना विस्तार रूप से है. हाँ, अर्जुन की तरह जो भगवान होगा, तो जिस तरह अर्जुन कृष्ण का मुख से डायरेक्ट भगवत गीता का ज्ञान सुने थे, तो कोई भाग्यशाली हो सकते वो भी डायरेक्ट कृष्ण का मुख से भगवत गीता का वाणी श्रवण कर सकते. लेकिन कोई प्रश्न उठा सकते नहीं अर्जुन की तरह क्यों होगा भाई, इतना वो क्या क्रोधी आदमी है, हिंसुक आदमी था, कितना आदमी कुरुक्षेत्र युद्ध में हत्या किया है. तो प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके सारे सद्गुण उसके अंदर समाहित है. तो जब सारे सद्गुण का खान है एक वैष्णव, तो उनके पास क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करना मामूली बात है. तो प्रश्न था उन्होंने क्यों हिंसा किया, क्यों क्रोध किया. तो प्रभुपाद कहता है वो क्योंकि कृष्ण अर्जुन के माध्यम ज्ञान देना चाहते थे. जिस तरह भूख यदि नहीं लगेंगे, खाना अच्छा लगता है, खाना कब अच्छा लगता है, जो भूख लगता है. आप किसी को ज्ञान कब देंगे, जब उसे वो ज्ञान का उनका भूख है उसके अंदर, जो उन्हें मैं सब जानता हूं उसको बोल के आपको भी मजा नहीं लगेगा. डॉक्टर किसको दवाई देते हैं, जिसको बीमार है और क्रिटिकल इल पेशेंट जो है उनका दवाई देके इलाज करके डॉक्टर को भी मजा लगता है. लेकिन जिसका कोई बीमारी नहीं है उसका दवाई बड़े डॉक्टर उनके पास क्यों टाइम वेस्ट करेंगे. तो इसी तरह कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान देंगे, तो अर्जुन को इस तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूख होना चाहिए. तो भगवत गीता में प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में कहा भगवत गीता किसके लिए, आप लोग भगवत गीता पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, किसके लिए भगवत गीता है और भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है. प्रभुपाद इंट्रोडक्शन लिखता है भगवत गीता का उद्देश्य है अज्ञान का अंधकार में अंधेरा में आदमी जो दुख कष्ट भोग रहा है उसका उनके उद्धार का प्रकाश चिन्मय जगत में लेके आना. तो अभी यदि भगवत गीता का उद्देश्य है जो जो अंधकार अंधेरा में फंसा हुआ आदमी है अज्ञान का अंधेरा में उनका उद्धार करना, तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कठिन लग रहा है समझना? जिस तरह मान लीजिए यहाँ फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है, तो उसका डॉक्टर के पास चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? वह जगह प्रमाण करना चाहिए हमारे बीमारी है। नहीं, क्यों डॉक्टर लेस करें? यह डॉक्टर फ्री मेडिकल में बैठे हैं, तो वह चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको पहले बोलना चाहिए मेरा एक बीमारी है, तभी ना जाएंगे। तो भगवत गीता का उद्देश्य है अज्ञान का अंधेरे है, अच्छा आदमी फंसे उसको उद्धार करना। तो ज्ञान प्राप्त करना हमके पहले उपलब्धि करना, हाँ भाई हम अज्ञान का अंधेरे में फंसा हुआ है। ये अनुभव नहीं होगा तो गीता पढ़ के क्यों जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा खाना है, हमारे भूखने की जरूरत नहीं है। तो खाने के लिए पहले क्वालिफाई, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, हाँ हमें भूख है। तो हम अज्ञान में अंधेरे में फंसा हुआ है, तो इस तरह जब अनुभूति होगा तभी भगवत गीता के कारण। तो अर्जुन उस तरह का अभिनय ले रहा है, हाँ भाई मैं अज्ञानी हूं, बद्ध जीव हूं, कंडीशन सोल। जब इस तरह तभी कृष्ण ज्ञान दे सकते हैं। तो ये ज्ञान कृष्ण दुनिया को देना चाहते हैं। तो दुनिया को देने के लिए किसी तो आदमी को माध्यम देंगे, कोई आदमी तो मांगना चाहिए, और आदमी को क्या बोलना चाहिए? मेरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान दो। और ये ड्रामा किसके साथ होगा? जो उसको व्यक्ति को लेना चाहिए। जिस तरह कोई आप जगह जा रहा है ये ड्रामा करने के लिए, तो वह जगह कोई आदमी को उठा के लेकर ड्रामा करेंगे, आपको साथ में कोई आदमी को लेके जाएंगे जो पहले से जानते हैं। तो कृष्ण जब करना चाहते तो कोई भक्तों को लेना पड़ेगा और जाके बोलना पड़ेगा मेरे साथ इस तरह अज्ञानी का था रोल प्ले करो, ताकि मैं तुम्हारे माध्यम से इसको बोल सकते कृष्ण। तो ये अंश से हम आज चालू करेंगे। साजिलो अर्जुन जन मायावधन मोहितेर नाय हईलो पांडव सोदर। तो कृष्ण का मनोभाव समझ गया अर्जुन। तो कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते हैं और ज्ञान जो मायाबद्ध, माया में फंसे हुआ आदमी है, तू आदमी को देगा। तुम अर्जुन से मुझको इस तरह एक अभिनय करना पड़ेगा, एक मायाबद्ध व्यक्ति की तरह। मायाबद्ध तो माया से फंसा हुआ है, साजिल अर्थात ड्रेस्ड अप, दवा करने के पहले क्या करना चाहिए? मेकअप लेना पड़ेगा ना, उसका साजना सन। तो अर्जुन उस तरह मेकअप लिया, किस तरह एक मायाबद्ध जीव के तरह। साजिलो अर्जुन जेन था जिस तरह मायाबद्ध नर। और तो क्या रोल प्ले कर रहा है? मोहितेर नाय, मोहग्रस्त व्यक्ति के तरह अभिनय कर रहा है। पांडव सोदर, सोदर अर्थात क्या है? सोदर हाँ, सह एक्चुअली सोदर नहीं है, उसका सहोदर, उदर पेट, सह एक साथ एक पेट में था, कौन है? भाई। तो सहोदर में सह उदर जो एक पेट में था उसका नाम कौन? सहोदर। तो भाई को बोलता है सहोदर, तो चलती भाषा में इसको बोलता है सोदर। तो पांडव सोदर अर्थात पांच भाई के एक भाई अर्जुन, पांडव सोदर अर्थात अर्जुन। तो अर्जुन किस तरह बोल रहे हैं? आत्मीय स्वजन हिंसा परे राज्य भोग, इथे की बा शोक पार्थ देखाइला शोक। अर्जुन बोल रहा है हे कृष्ण, आप मुझको युद्ध करने के लिए बोल रहा है? ये आत्मीय स्वजन की हिंसा करना पड़ेगा? हिंसा शब्द हिंदी में है, आत्मीय स्वजन हिंसा, उसके बाद राज्य भोग उसको किसके साथ तुलना दिया अर्जुन? सेव रुधिर माखा कैमने करीब सखा से युद्ध के करिया कबे प्रभुपाद इस तरह बांगला गान गीता में गान रूप में लिखते हैं। सेवक रुधिर माखा खून से सना हुआ राज्य होगा, हे कृष्ण आप मुझको युद्ध करके राज्य भोग करने के लिए बोल रहा है। वो जो राज्य है मेरा गुरु का द्रोणाचार्य दादाजी भीष्म और रिश्तेदार का खून से सना हुआ राज्य उसको भोग करना पड़ेगा, इस तरह उपदेश क्यों दे रहा है? आत्मीय स्वजन हिंसा परे राज्य भोग इति की बासुक इसके अंदर क्या सुख है? पार्थ देखाइला अर्जुन इस तरह सुख प्रकाश किया अर्जुन, हे कृष्ण इसके अंदर मैं तो कुछ सुख नहीं देख रहा हूं, इसको हत्या करके राज्य भोग करो। तो पूरे दुनिया के यदि राज्य भोग करो पूरा संपद हमारे होगा से वो संपद होगा रिश्तेदार के खून से सना हुआ है उसके भोग में मजा किया है, अब मुझको राजावान किस तरह सुखी होने के बोल रहा है, इसका अंदर तो मैं सुख कोई नहीं देख रहा हूं। तो अर्जुन क्या सोच रहा है? या कृष्ण मुझको युद्ध करने के बोले मुझको सुखी पाने के लिए सुखी होने के लिए वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को सुखी करना। अर्जुन सोच रहा था इसके अंदर मेरा क्या सुख है, लेकिन गीता ज्ञान लाभ करने के बाद अर्जुन सुन रहे नहीं वास्तव में हमें कृष्ण को सुख देने के लिए युद्ध करना चाहिए। तो पहले युद्ध के बारे में उनका क्या था, ये युद्ध में मेरा क्या सुख है, लेकिन गीता ज्ञान सुनने के बाद लग रहा है हाँ एक कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो यह है जड़ और चिन्मा है, इसका फर्क क्या है? केंद्र में हम जड़ है और केंद्र में कृष्ण है, वह चिन्मा है, सेम युद्ध है। वो युद्ध चिन्मा तक कब लाभ किया? कृष्ण के सुख के लिए। उसी तरह जो पढ़ाई कर रहा है नौकरी कर रहा है वो पढ़ाई नौकरी सब जा रहा है यदि हमारे सुख के लिए होगा, और वो पढ़ाई और नौकरी चिन्मय होगा कब? यदि हम कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहा है। तो इस तरह अर्जुन सोच रहा है मेरा सुख जरूरत नहीं है, इस तरह में राज्य भोग नहीं करना चाहता हूं। सही तो देहात्म बुद्धि आत्मीय ज्ञान करे। देहात्म बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, देह को आत्मा समझना। मैं देह हूं इसे देहात्म बुद्धि। सही तो देहात्म बुद्धि आत्मीय ज्ञान करे। अर्जुन सोच रहा है दुर्योधन आदि सब मेरा आत्मीय है, तो उसको क्या कहता है? देहात्म बुद्धि। इसको पहले हम पढ़ा था, आत्मीय शब्द का अर्थ है आत्मा के साथ संपर्कित, देह के साथ संपर्कित आत्मीय नहीं कहते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है आत्मा के साथ संपर्कित। कब आत्मा के साथ संपर्कित? ये अंगुल के साथ, ये अंगुल का संपर्क किया है, ये हाथ के साथ है, ये हाथ के साथ, ये हाथ का संपर्क किया है, ये शरीर के माध्यम है। तो एक आत्मा के दूसरे आत्मा के संपर्क है परमात्मा के साथ, तभी ये रिश्तेदार है। ये हाथ में एक मच्छर गिरेगा कौन हाथ जाएगा बचाने के लिए? वही हाथ जाएगा? नहीं, ये हाथ जाएगा। आपका हाथ नहीं जाएगा, मेरा हाथ जाएगा, सारे हाथ नहीं जाएगा, ये हाथ मच्छर गिरेगा, ये हाथ जाएगा, क्योंकि यही हाथ दोनों हाथ एक शरीर का अंश है, दूसरे शरीर हाथ से नहीं आएगा। तो ये हाथ के रिश्तेदार कैसे हो गया? ये शरीर के साथ संपर्क है। तो उसी तरह एक आत्मा दूसरे आत्मा का बंधु क्यों? परमात्मा के साथ संपर्कित है। तो उसके कथा आत्मीय आत्मा के साथ संपर्क, लेकिन अर्जुन यहां देहात्म बुद्धि बोले वो मेरा आत्मीय है, शरीर के साथ संपर्कित है, स्किन डिजीज है उनका, बोले ये स्किन है वो स्किन, एक ही हमारे कुरुवंश से आया है इसलिए हमारा कुरुवंशी भाई, वो स्किन डिजीज है, वो देहात्म बुद्धि। क्षत्रिय स्नेह युद्ध क्षेत्र सा, ये देहात्म बुद्धि के कारण क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध क्षेत्र से के जाना चाहते हैं। क्षत्रियो क्षत्रिय शब्द क्षत्रायति थी, दूसरा को दुख कष्टों को से मुक्त करना, लेकिन अभी देहात्म बुद्धि के कारण युद्ध क्षेत्र से के उन्होंने जाना चाहते। इस तरह जब मोहग्रस्त हो गया, मोह देखी कृष्ण तार करिलो निंदा, इस तरह जब मोह देखा कृष्ण किया क्या उनको निंदे किया ना, क्या बोला कृष्ण, क्या बोले थे इसने, निंदन किया कि नहीं किया, कुदस्ता कहा से कश्मला मिदम, ये से कुलुस कहा से तुम्हारे यहां विषम में समुपस्थित, इस तरह विषम मुहूर्त में तुम्हारे ये कहा से अनार्य दुष्टम असर्गम, इस तरह जो काम है अनार्य आर्य के तरह मनोभाव नहीं है, असर्गम स्वर्ग जाने के लिए नरक जाने का तरह मनोभाव लेकर है, यह कहा से है। पहला श्लोक में किसने इस तरह हिट किया उनको, अर्जुन ने सोचा मैं कितना अच्छा आदमी, कितना दिल नरम दिल वाला आदमी है, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, कृष्ण मोरा पीठ को चपरेगा, वाह तुम बहुत अच्छा आदमी हो, इतना तुम मेरा बंधु है, इतना सरल हृदय है, इतना नरम हृदय है, लेकिन कृष्ण उनको कितना डांटा पहले द्वितीय देख शुरू से कुतस्त कहा से आया इस तरह, कुतस्त इतना डांट के नहीं कहा, प्रेम से कम, जस्ट मेरा भाषा से बोल रहा हूँ, कुतस्ता कश्मलमिदम विषम समुपस्थितम, ये विषम विषम अभी शंख बाजा दिए युद्ध करना चाहिए, इस स्थिति में पहले बताता था मैं अच्छा तो समझा सकता था, अभी युद्ध तीर छोड़ना काम है, अभी अभी इस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं विषम समय, बहुत पहले बताता तो अलग बात चलता था, इस स्थिति में क्यों, और ये अनार्य की तरह है, अनार्य शब्द प्रभुपाद तात्पर्य में कहता है अनार्य शब्द आर्य नहीं है, जो जीवन का मूल्य बोध नहीं जानते हैं, जीवन के उद्देश्य का नहीं, उसको अनार्य कहता है, और ये काम असर्गम स्वर्ग जाने, स्वर्ग जाने के नाम नहीं है, नरक जाने का वाला मनोभाव है, अकीर्ति केवल वही नहीं है, नहीं नरक जाए कोई समस्या नहीं भाई, अकीर्ति भी होगा, ये दुनिया में जितना दिन रहोगे ना आदमी निंदा करेगा, अकीर्ति एक सोलह में कितना सारे बता दिया कृष्ण जी, युद्ध नहीं करोगे कितना कितना समस्या हो सकते है, मरोगे नरक जाओगे और दुनिया जिंदा रहोगे, अपजस होगा अकीर्ति होगा, इतने केवल नहीं उन्होंने बोला कोई वो मस्त भगव, एक क्लिप के तरह आचरण क्यों कर रहा है, इसका अर्थ तो क्या है, क्लिप शब्द अर्थ तो क्या है, क्लिप क्लिप शब्द हिंदी में है, जेंडर कितना है हिंदी में, मस्कुलिन फेमिनिन और क्या न्यूटर, हिंदी में क्या क्या है, हाँ पुंगलिन स्त्रीलिंग नपुंसक क्लिप लिंग, तो क्लिप लिंग होता है क्लैबम, क्लिप की तरह बातें कर रहे हो तो जब अर्जुन जब उनका अभिमन्यु की तरह पुत्र है तो आदमी को क्लिप बोले, इसका अर्थ क्या है, कितना बड़ा अपमान है, कृष्ण उनको क्लिप की तरह बातें कर रहे हो, और इसका अर्थ क्या है, कितना बड़ो क्लिप बोल के संबोधन कर, नहीं बोल नहीं बोला क्लिप, क्लिप की तरह बातें कर रहे हो, तो एक अर्जुन के तरह व्यक्ति को इस तरह बोलना कितना, हमको बोले हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, अर्जुन के तरह क्षत्रिय को इस तरह बोलना डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है, तो इस तरह डांटे थे कृष्ण गीता का शुरू से। तो मोह देखी कृष्ण तार करिलो निंदा, इस तरह जब मोह ग्रस्त हुआ कृष्ण ने बहुत डांटा इस तरह, और डांट खा के अर्जुन क्या बोला, डांट खाने के बाद अर्जुन क्या बोला, बोले तो पता है पहले थे पहला अध्याय में बहुत सारे किसी मैंने पाप नहीं करिए, पाप होगा नरक में जाएंगे, अकुल धर्म नाश होगा, इस तरह बहुत सारे बातें किया। और ये एक एक अध्याय कृष्ण ने बहुत ठंडा दिल से सुना बहुत कुछ इनका लेकिन आज सहन नहीं किया दूसरा अध्याय में और जब डाटा किसने तब अर्जुन को होश आया, तब क्या बोले अर्जुन तो बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन सा ठीक है, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोल रहे मेरे समझ नहीं पा रहा हूं युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और युद्ध यदि करूंगा कि मेरे जीतना चाहिए कि हारना चाहिए मैं समझ में नहीं आ रहा है, इनडिसीशन। तो अभी मुझको आप उपदेश दीजिए। अतएव अर्जुन कहलो शिष्यत्व ग्रहण, डांट खाने के बाद शिष्य हुआ। इसलिए गुरु को कभी कभी इसलिए गुरु शब्द आता है हैवी होना पड़ता है, नहीं तो शरणागत नहीं होना चाहते। आप कभी कभी लेक्चर में जाएंगे कोई के बाहर का आदमी उल्टा पल्टा बोलना शुरू करते, कभी कभी डांट के उसको थामना पड़ेगा, नहीं तो भी वो परिवेश माहौल खराब कर देगा। कभी कभी इस करना पड़ते है ना, जिस तरह प्रभुपाद इलाहाबाद कुंभ मेला में लेक्चर दे रहे थे, हजार हजार 10-15 हजार आदमी पंडल में कुंभ मेला में, तो एक आदमी ने हाथ उठाया। प्रभुपाद हिंदी में लेक्चर दे रहे थे, वो बंगाली हाथ रहे बंगाली, वो बोले बांग्ला में प्रश्न पूछा तो उन्होंने पूछा दुनिया में इतना सारे बड़े बड़े मंदिर पुराना मंदिर है ये रहते हुए आप नया मंदिर क्यों बना रहे हैं? तो प्रभुपाद बोले आपका साथ में बैठे हुए कौन है? तो बोले मेरा पत्नी है। प्रभुपाद शादी क्यों किया? तो इतना आदमी के अंदर क्या आंसर देंगे, उसका हिम्मत नहीं। तो प्रभुपाद बोले शादी किया इस कथा आप संतान चाहते हैं? बोला हाँ सही है, आंसर मिल गया। तो प्रभुपाद बोले इतना सारे बच्चा रास्ता में घूम रहा है तो बच्चा पैदा करने क्या जरूरत, वह एक बच्चा के लेके पालन करो, शादी करने क्या जरूरत। प्रभुपाद फिर बोला इसीलिए इतना बच्चा रास्ता तो होते हुए भी आपकी इच्छा है आपका खुद का बच्चा हो, उसको आप प्रेम से उसको खुद का बच्चा को आप प्रेम से पालन कर। उस तरह भक्त भी बहुत सारे मंदिर होते हैं भी वो चाहते हमारे खुद एक भगवान एक मंदिर होगा, हम अलग करके सेवा करेंगे। तो इतना आदमी को अंदर इस तरह नहीं बोलते थे, ठंडा नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने तो इतना आदमी को बाद में अपमान कर दिया। और प्रभुपाद ने हिंदी में आंसर दिया फिर कि प्रभुपाद सुना उसको सबको पास छोटा करना चाहते हैं, नहीं तो ठंडा नहीं, क्योंकि बांग्ला में देगा तो आदमी दूसरा आदमी नहीं समझेगा, तो देखा सबका अंदर हिंदी में इसका जब दे मिस कर। तो उन्होंने बोले मैं तो बांग्ला में प्रश्न पूछा आप हिंदी में क्यों आंसर दे रहे हैं? बोले बांग्ला हिंदी बड़े बात नहीं, आप समझ में आ रहा है कि नहीं वो बात करो। तो जरूरत होते है कभी कभी जब मीठा बात नहीं सुनते तभी कभी कभी हैवी बात बनना पड़ता। अर्जुन अर्जुन किस तरह जब डाटा तब अतएव अर्जुन कहलो शिष्यत्व ग्रहण, तो अर्जुन ने क्या कहा शिष्यस्ते हम शादिमांग तांग प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ मुझको आप शिक्षा दीजिए। शिष्य होया करे यही गीतार श्रवण घोचिवे अज्ञानार संसार बंधन। तो अर्जुन गीता का वाणी किस तरह ग्रहण किया था? शिष्य होकर। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हमें यदि गीता पढ़ना चाहिए तो शिष्य होकर गीता पढ़ना चाहिए। इसके बारे में प्रभुपाद कौन सा उदाहरण दिया था? हाँ वो तो है, लेकिन यह पर भगवत इंट्रोडक्शन में भगवत गीता ग्रहण करने मनोभाव क्या होना चाहिए था? प्रभुपाद बोलते हैं मऊमाछी मधुमक्खी यदि मधु शायद पीना चाहते हैं तो क्या करना, तो पहले ढक्कन खोलना पड़ेगा। शायद का बोतल है और मोक्षी इसको पीना चाहते क्या करना, तो पहले ढक्कन खोले बिना शायद पी सकते नहीं। तो उसी तरह भगवत गीता ग्रहण करने के पहले हमें ढक्कन खोलना क्या है, हमें भक्त होना है। भक्त हुए बिना सारा दिन रात दिन नहीं सारे जन्म जन्मांतर पढ़ते रहेंगे कोई समझ में नहीं आएगा। तो गीता पढ़ने के पहले क्या मनोभाव होना चाहिए, कृष्ण भगवान है हमें कृष्ण भक्ति करना है, कैसे ये मनोभाव जब होगा तभी वो गीता पढ़ के समझ में आएगा। तो इसलिए पूर्वक शिष्य होइया, शिष्य बनकर करे जे गीतार श्रवण, गीता पाठ करना गीता श्रवण करना कैसे, शिष्य बनकर श्रवण करना, तब घुचिबे अज्ञान और संसार बंधन, अज्ञानता संसार बंधन तब से मुक्त होगा। तो गीता पढ़ने के लिए पहले हमें ये स्वीकार करना चाहिए, हाँ कृष्ण भगवान है हम उनका दास है, ये गीता पढ़ के हम सीखेंगे कृष्ण क्यों भगवान और कैसे कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, तभी हमारी जो अज्ञान और अंधकार से हम मुक्त हो सकते। तो अर्जुन का संसार बंधन छूट गया था गीता सुनकर, यह तो प्रभात कहता है शिष्य बनकर यदि हम गीता श्रवण करके क्या होगा, संसार बंधन छूट जाएगा। तो आप लोग कौन कौन चाहते हैं आपका संसार बंधन छूट जाए, रिश्तेदार दिख नहीं रहे संसार बंधन अर्जुन को छूट गया था क्या, भगवत गीता अर्जुन किस तरह ग्रहण किया था, शिष्य बनकर। तो प्रभुपाद बोलते जो शिष्य बनकर सुनेंगे उनका संसार बंधन टूट जाए, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अर्जुन संसार बंधन से मुक्त हुआ था, सन्यासी बने थे संसार बंधन से मुक्त हुआ था, हाँ संसार घुचिलो किंतु बाध्ये नेशी नय, अर्जुन संसार बंधन से मुक्त हुआ था लेकिन बाहर रूप से सन्यासी नहीं बने थे। इस तरह नहीं संसार बंधन छूटना आता सन्यासी बनना नहीं। गीतार तात्पर्य गृह ए रूप बुझाए, गृहस्थ लोग को गीता का सार इस तरह समझना चाहिए। नहीं हम गीता पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने कहा ये संसार बंधन छूट जाएगा तो हम गीता क्यों पढ़ेंगे, कोई हम जब गीता सेल करना ग्रंथ वितरण में जाता है बोले ये गीता घर में रखना चाहिए क्या, क्यों नहीं रखेंगे, बोले नहीं हमको नहीं पूर्वज ने कहा है ये गीता घर में रखें तो कुरुक्षेत्र चालू हो जाएगा इसीलिए घर में नहीं रखना चाहिए इसको पता नहीं किसने कहा उनको गीता घर में रखे महाभारत चालू हो जाएगा, कुरुक्षेत्र युद्ध चालू होगा इसीलिए घर में गीता नहीं रखेंगे। तो इस तरह कोई सुनेंगे जो पूर्व बांधने का गीता पढ़ना जो संसार बंधन छूट जाएगा, तो पत्नी परमिशन देगा गीता पढ़ो तो संसार बंधन छूट जाएगा, भाई ये पुस्तक पढ़ेंगे संसार बंधन छूट जाएगा मेरा क्या होगा फिर, तो इसलिए गीता घर में नहीं रखना। हाँ नहीं यहाँ पूर्व कहता है गीतार तात्पर्य गृह स्वरूप बुझा, हाँ जो गृह में रहना चाहता है उनके भी गृह हाँ संसार बंधन छूट सकते, इसको अर्थ नहीं हाँ उनको संन्यास लेना पड़ेगा। संसार घुचिलो किंतु बाध्य नहीं, संन्यास लेना जरूरत नहीं लेकिन भगवत गीता का ज्ञान श्रवण करने से हमारे संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये संसार आसक्ति जो संसार तब क्या होगा, वो कृष्ण का संसार बनेंगे हम नौकर बन के रहेंगे। गीता का ज्ञान लाभ करने के बाद हाँ संसार संसार का सारी संपत्ति किसको हो जाएगा, कृष्ण को हो जाएगा। तो उधर में अभी जो मालिक बन के रहा गीता का ज्ञान बन के उधर में हम नौकर बन के रहेंगे। तब जब मोह से मुक्त हो गया था अर्जुन, जो मोह से मुक्त हो गया था उसका लक्षण क्या था, गीता ज्ञान सुनकर अर्जुन का मोह मुक्त हो गया था। तो ये बात नहीं बोले कड़िष्य वचनंतम, हाँ आप जो कहा मैं करूंगा कड़िष्य वचनंतम, हाँ एक व्यक्ति ने बोला मेरा गीता बहुत एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, कौन सा श्लोक? जैसे शशि तथा गुरु, कृष्ण ने कहा तुम्हारे जो इच्छा करो हरि। ये बोले इनको बहुत अच्छा लगा, कृष्ण इतना अच्छा आदमी है, कृष्ण उपदेश दिया अभी तुम जो खुश करो, जैसे शशि जथा इच्छा ओशी तथा गुरु। लेकिन कृष्ण क्या कहा, अर्जुन क्या कहा, करिष्य वचनं तव, यद्य भी इतना फ्रीडम दिया कृष्ण ने, अभी तुम्हारे जो इच्छा करो, लेकिन कृष्ण ने कहा करिष्य वचनं तव, सही मंत्र सिद्धि, ये सिद्धि का चरम अवस्था है। हाँ, कृष्ण जो बोले भगवत गीता में जो लिखा है वो संपूर्ण सत्य, उसको हमें जीवन बिताना चाहिए, ये जीवन का सिद्ध अवस्था है। कौतिक युद्ध तार होलो जस वृद्धि, जब इस तरह मनोभाव लेकर अर्जुन युद्ध किए थे, इसीलिए अर्जुन को युद्ध में जयला हुआ था, यश वृद्धि हुआ था। वैष्णव निरीह सब माला जप करे, कोई आदमी बोलता है अरे वैष्णव तो निरीह, निरीह सब जानता है निरीह, हाँ निरीह अर्थात मासूम, निरत मासूम, इनोसेंट, बोले वाले किसी को लड़ना नहीं चाहता है, सुबर तो वो तो कब बैठ के माला जाप करता है वैष्णव। वैष्णव क्या करता है, वो किसी को इस तरह दंडन झगड़ा नहीं करेंगे, वो तो बैठ के माला जाप करते हैं। लेकिन एक वैष्णव अर्जुन संसार भीतर, यह अर्जुन किस तरह वैष्णव है, हम जानते हैं वैष्णव तो निरीह है का बैठ के माला जाप करते हैं, ये अर्जुन ये किस तरह वैष्णव है, युद्ध करते हैं। कोई इस तरह प्रश्न उठा सकते, प्रभात सब जानते थे, वैष्णव निरीह सब माला जाप करे, ये कौन वैष्णव, ये किस तरह वैष्णव है संसार भीतर। निर्द्वंद वैष्णव शुद्ध जप करे माला, वैष्णव तो निर्द्वंद, द्वंद अर्थात झगड़ा, लड़ना झगड़ना, वैष्णव तो निर्द्वंद है। निर्द्वंद वैष्णव शुद्ध जप करे माला, वो तो किसी झगड़ा नहीं करेगा, बैठ के माला करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं बलये एरूप जरा खाए मन कला, जो इस तरह बोलते हैं वो मन से केला खा रहा है, मन कला था असली केला नहीं है, वो मन से केला खा रहा है, मन कला खाना था मन से केला खा रहा है, दे डिमार। तो जो सोचते हैं हम वैष्णव होगा, हमको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी तो मंदिर में जाके जखल माला जप करेंगे और हमारे सामने सपन होगा जाएगा। तो हम उस तरह वैष्णव, हमको वैष्णव बना तो कुछ काम नहीं करना, अभी खाली हम माला जप करो प्रसाद खाएंगे। निर्द्वंद वैष्णव शुद्ध जप करे माला, बोले अर्थात इस तरह आदमी जो बोलते हैं, जो व्यक्ति इस तरह बोलते हैं जो वैष्णव कब माला जप करते, वो युद्ध क्यों करेंगे। बोले ए रूप, इस तरह जो बोलते हैं खाए मन कला, उसे मन से केला खाते हैं, शुद्ध शुद्ध अर्थात सिर्फ शुद्ध, शुद्ध अर्थात ओनली, केवल शुद्ध अर्थात ओनली, वो केवल मन से केला खा रहा है। वैष्णव निरीह अकृतद्रोह है तो स्वाभाविक, वैष्णव का स्वभाव इस तरह है निरीह, अकृतद्रोह अर्थात नंडमकृत द्रोह, किसी कुछ द्रोह झगड़ना नहीं करते हैं, स्वभाव इस तरह है, तो स्वभाव इस तरह है निरीह, किसी का किसी देश नहीं करते, वह सही है। किंतु न है हीनो वीर्यो यथालोक भावे, झगड़ा नहीं करते, इसका अर्थ नहीं उसकी शक्ति नहीं, हीनो वीर्यो अर्थात वीर्यहीन, कम शक्ति वाला नहीं, वैष्णव झगड़ा नहीं करते हैं, इसका अर्थ नहीं उसकी शक्ति नहीं है। तो हरिदास ठाकुर को बाई बाजार में पिटाई किया, कुछ हुआ था? कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो शक्ति नहीं होता तो एक बाजार में तो वो मर जाता था, लेकिन 22 बाजार पट्टे करने के बाद उनका कुछ नहीं हुआ। हीरोवीर जो ने उनको लड़ाई नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ नहीं उनका शक्ति नहीं था। किंतु ना हीनोवीर जो यथा लग, जिस तरह आदमी सोचते हैं वैष्णव का शक्ति नहीं, बात सही नहीं है। उसके बाद प्रभुपाद एक अच्छा युद्ध। अच्छा, पहला विश्व युद्ध कौन साल में हुआ था? 1911-14 चार साल हुआ था। और सेकेंड 1939-44 लगा। ये गलत इतिहास है, हमारे इतिहास में ही लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन प्रभुपाद इसको स्वीकार नहीं करते हैं। भारतेर दुई युद्ध दुई महाशय, दो बार पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वैष्णवी अग्रणी तारा कहले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा? रामायण का युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुरुक्षेत्र। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जय लाभ किया? हनुमान। कौन थे हनुमान? वैष्णव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अर्जुन। सो ये दो हिस्से हैं। अभी ये इतिहास नहीं जानते आदमी लोग। हाँ, अभी जो वर्ल्ड वॉर वो थर्ड और फोर्थ था, फर्स्ट सेकंड नहीं है। भारतीय दुज उधर में हमारे क्या बोले चाइना चाया फाइयान और क्या, वो लोग आगे इतिहास लेकर, हम उसको इतिहास मानते हैं। हमारे महाभारत रामायण उसकी इतिहास नहीं मानते हम, क्योंकि हम इतना 200 साल पराधीन डिपेंडेंट रहने के कारण इतना हालत खराब हो गया। अभी लगते वो लोग जो बोलते वही सही है, हमारे सब गलत है। महाभारत रामायण में जो लिखा वो नहीं है, अभी वो लोग जो बोलेगा वही सही है। लेकिन पूरा देखते हैं भारतीय दुई युद्ध दुई महाशय, भारत में दो महायुद्ध हुआ था, लेकिन वह दो व्यक्ति दो महाशय जयलाभ किया था। वैष्णव अग्रणी तारा करिल विजय, वो लोग जयलाभ क्यों किया थे? वैष्णव थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वैष्णव जयलाभ किया थे, सेकेंड वर्ल्ड में वैष्णव जयलाभ किया थे। इसका अर्थ नहीं वैष्णव का शक्ति नहीं है, विश्व युद्ध में वैष्णव जयलाभ किया। क्यों इतना कहां से शक्ति आया? निज इंद्र तृप्ति वांछाए युद्ध नहीं करे, तभी प्रश्न हो सकते हैं तो फिर वैष्णव कैसे हो गया? इतना युद्ध के इतना आदमी को मारा तो वैष्णव कैसे बन गया? हाँ, आप किसी को घर में आग लगा देगा आपका हालत क्या होगा? किसी घर में आग लगाएंगे आपका हालत क्या होगा? किसी घर में आप आग लगा देंगे तो आपका हालत क्या होगा? और हनुमान सारे लंका में आग लगा दिया था, इसीलिए उनको पूजा कर रहा है। तो ये काम क्यों? निज इंद तृप्ति वांछाए युद्ध नहीं कर, ये जो काम किया था हनुमान वहां जाके लंका का राजा बनने के लिए नहीं, लंका जला दिया था रामचंद्र को खुश करने के लिए। निज इंद तृप्ति वांछाए युद्ध नहीं करे, अर्जुन युद्ध किए थे खुद के इच्छे से नहीं, कृष्ण ने चाहते थे। निज इंद्र तृप्ति वांछाए, खुद की इंद्र तृप्ति करने के लिए युद्ध नहीं किए थे। वैष्णव बोलिया था विदित संसार, इसीलिए विदित अर्थात वेल नोन, इसलिए सारा दुनिया में ये लोग वैष्णव रूप में विख्यात है, क्योंकि उन्होंने युद्ध किया था खुद के इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं, इन्होंने भगवान को खुश करने के लिए युद्ध किया था, इसीलिए उनका नाम है वैष्णव। वैष्णव ना देखिया बोले वैष्णव निष्क्रिय, वैष्णव प्रभुर सेवाय सदाई सक्रिय। जो आदमी वैष्णव को देखा नहीं है वो आदमी बोल सकता है हाँ वैष्णव निष्क्रिय है, निष्क्रिय अर्थात इनएक्टिव, निष्क्रिय, निष्क्रिय जो काम नहीं करता है। जो आदमी वैष्णव को देखा नहीं है वो सोचते हैं वैष्णव निष्क्रिय। आप लोग के बीच में कोई आदमी बोल सकते जो मंदिर ज्वाइन करना चाहता है, हाँ तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे आप? स्केपिस्ट। पिता माता का जिम्मेदारी छोड़कर, समाज का जिम्मेदारी छोड़कर मंदिर में जाके हाँ खुद को उद्धार पाने के लिए आप जा रहे हैं, समाज का देश का जाति का सेवा नहीं कर रहे। बोले ना, कौन कौन इस तरह स्टेटमेंट का मुख फेस किया था सबको, जो आप लोग साधु हो रहा है ये दुनियादारी से भागने के लिए। उनको पूछना आप रात कितना सुबह कितना बजे उठते हैं, पूछ लेना कितना बजे उठते हैं और आप कितना बजे उठते हैं। तो बाहर के आदमी कितना बजे उठते हैं? 7-8 बजे। आप लोग कितना बजे उठते हैं? कम से कम 4 बजे के पहले। तो कम से कम 4 घंटा पहले उठ रहे, तो कौन निष्क्रिय और कौन सक्रिय है? तो वैष्णव ना देखिया बोले वैष्णव निष्क्रिय। जो वैष्णव को देखा नहीं है वो बोलेगा वैष्णव निकम्मा है। निकम्मा बोलते हैं कोई काम का नहीं है, अकर्मण्य शब्द भी है, कोई काम का काम नहीं करते। वैष्णव प्रभुर सेवा है सदा सक्रिय। वैष्णव भगवान के सेवा के लिए हमेशा सक्रिय है। अव्यर्थ कालोत्तम प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव इतना सेवा करेंगे, रात सोने के टाइम सोचते हैं दिन 24 घंटे के 25 घंटा होना चाहिए था, सारे काम हुआ नहीं आज मेरा इतने एक्टिव है हाँ सारा दिन है एक्टिव। वैष्णव प्रभुर सेवा है सदा ही सक्रिय। गोस्वामी लोग कितना सोते थे? 1.5 से 2 घंटा, फिर भी रोज नहीं, रोज नहीं हाँ। 4 दंड निद्रा से नहे कोनो दिने, 4 दंड 1 दंड 24 मिनट, तो 4 दंड 96 मिनट। 4 दंड निद्रा से नहे कोनो दिने, वो भी रोज नहीं। आज एकादशी है, जन्माष्टमी है, कोई फेस्टिवल है, पूर्वतन आचार्य का कोई, तो वो दिन तो आज कुछ ग्रंथ लिखना है, ये तो बहुत दिन तो छूट जाता है सोना। वैष्णव प्रभुर सेवा सदाई सक्रिय। और वो जो कोई वैष्णव, वो जो 1.5-2 घंटा रेस्ट है वो सोते नहीं है, रेस्ट लेता है, जिससे माधवेंद्रपुरी बैठ के माला जप करते हैं। और किस तरह सोना है? उसी टाइम जब कर जब आग बंद है तब कृष्ण का लीला दर्शन करते हैं। लीला दर्शन कृष्ण भी आया दूध दे के जाते हैं, हाँ बोले इधर में जाओ, तो इस तरह उनका नींद है, रेस्ट है। तो इस तरह एक्टिव है वैष्णव। वैष्णव प्रभुर सेवाए सदाई सक्रिय। प्राणहीन कनिष्ठ से सेवा नहीं करे। जो सेवा नहीं करना चाहता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहता है वो प्राणहीन है, उसके अंदर प्राण ही नहीं है। जो सेवा नहीं करना चाहता है उसके अंदर प्राण नहीं है, प्राणहीन। प्रतिष्ठा तरे थाके निर्जन घर, तरे अर्थात के लिए फॉर, वो निर्जन भजन जो करना चाहते हैं, निर्जन अकेला अकेला रहकर माला जप करे, वो सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। आदमी हाँ देखो कितना बड़े भक्त है, अकेले अकेले बैठ के जप कर रहे हैं, वो एक्चुअली माला जप नहीं कर रहे, वो सम्मान चाहते हैं। आदमी आके बोलेगा हाँ आप कितना बड़े भक्त हैं, इसीलिए कर रहे हैं। सम्मान, सम्मान का भूखा है, भिखारी वो है, वो इतना भिक्षुक है, वो चाहते हैं भाई मुझको कोई सम्मान करो, इसीलिए मैं बैठ के माला जप कर आगे सर प्रशंसा कर बा आप कितना बड़े भक्त हो, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। वैष्णव प्रणम श्री नित्यानंद राय, मार खाए प्रेम दाय जथाए तथाए। प्रणम शब्द अर्थ क्या है? प्रणाम करने का यज्ञ पत्र, जिनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणम जिसे अनुष्ठितव्य, जहां अनुष्ठित होगा, अनुष्ठान होगा। गंतव्य शब्द अर्थ क्या है? गम गमन तब्ब, जहां पे गमन करना चाहिए, जहां जाना चाहिए, गंतव्य गंतव्य। इस तरह प्रणम, जिसके प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव प्रणम, श्रेष्ठ वैष्णव जिसको प्रणाम करना चाहिए वह है नित्यानंद प्रभु, शिलो नित्यानंद राय। क्यों उन्होंने इतना बड़ा वैष्णव, क्यों प्रणाम करना चाहिए, क्यों श्रेष्ठ वैष्णव? मार खाए प्रेम दे जथाए तथाए, उन्होंने जो आदमी पिटाई करते हैं उनको भी प्रेम देते हैं, इस तरह वैष्णव थे। ये वैष्णव का लक्षण है। हाँ, वैष्णव निरीह नहीं है, हाँ वो इस तरह वैष्णव है जो पिटाई करते हैं फिर भी प्रेम देते हैं। उन्होंने कहते हैं मेरे शिष्य कलशिर काना ताई बोले कि प्रेम देवो ना, बोले तुम तुम्हारे काम किया है मुझको मारा है, लेकिन मेरा काम करने दो, मैं तुमको प्रेम देने के लिए आया, तुम हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो। तो ये है नित्यानंद प्रभु, वहां वैष्णव ब्रह्म श्री नित्यानंद राय, मार खाए प्रेम दे जो था तथा। लेकिन भगवान सहन नहीं किया, चक्रवाणी चक्रवाणी आता चक्रवाणी आता पानी आता हाथ, कृष्ण का नाम चक्रवाणी, जिसका हाथ में चक्र उनका चक्रवाणी, अर्थात गौरांग महाप्रभु चक्रवाणी गौर हरि श्वेता करिल शासन। हाँ, तो गौर हरि हाथ में चक्र लेकर आए थे उधर में, हाँ उसको शासन करने के लिए। वैष्णव विद्वेषी तबे होइल दमन, भगवान खुद ने चक्र लेकर आए थे, इस तरह जगई माधव की दमन के थे। लेकिन नित्यानंद राय नित्यानंद प्रभु, हाँ उनके लिए भी उनको उन्नत के नहीं इसको क्षमा करो, तो इस तरह वैष्णव होता है, वैष्णव बहुत दयालु होते हैं। हाँ चक्रवाणी गौरवी स्पेलिंग बोला है श्वेता, श्वेता ACTA से श्वेता SE होगा, श्वेता था वहां पर उधर, श्वेता तो उधर वहां जाकर श्वेता वो जगह में जाकर, हाँ श्वेता हेथा अर्थात यहाँ पर, श्वेता अर्थात वहां पर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, श्वेता वहां जाकर उनको दमन किया था। ये रखते हैं कि कंटिन्यू करें, शायद बच गया, सबको घर में जाना है। हाँ ओके, क्वेश्चन एनी क्वेश्चन? अभी 17 है और 10 बचा है गन। कल देखते हैं शिव भागवत क्लास में 10 कंप्लीट कर सकते कि नहीं। नो क्वेश्चन।
महाराज जी आपने बताया कि गुरु को कभी कभी डांटना पड़ता है वरना शिष्य शरणागत नहीं होता, तो आजकल जो ज्यादातर बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो माता पिता बहुत पैम्पर करते हैं, तो हम भी पैम्पर्ड लाइफ जीते रहते हैं, तो बहुत ही हैंडल विद केयर आइटम बन जाते हैं फिर है? फ्रेजाइल हैंडल विद केयर आइटम बन जाते हैं फिर है। फिर उसके बाद जब गुरु या बड़े भक्त हमारे पर शासन करना चाहते हैं तो शासन नहीं हो पाता, हम शासित शिष्य नहीं बनते ठीक से उसके, तो वो कैसे उसमें सुधार लाए?
आप बोलना चाहते क्योंकि पिता माता का शासन करने हिम्मत नहीं था, इसीलिए बच्चे लोग शासन सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए उस तरह मंदिर में ज्वाइन किया, उस तरह गुरु का शासन भी सहन नहीं कर पाते, ये आपका प्रश्न है?
मतलब वो अभी शासित होने के लिए
तैयार नहीं है, क्योंकि बचपन से तैयार नहीं था, क्योंकि पिता माता उनका शासन नहीं किया, पिता माता का डर था शासन करेंगे भाग जाएगा, तो इसलिए पिता माता कभी शासन किया नहीं, इसीलिए शासन सहन करने का उनका आदत नहीं, इसलिए मंदिर में आके भी शासन छोड़ नहीं गए, इसलिए हम भी उनके शासन करने डरते हैं, तभी क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। शासन करने के लिए अधिकार होना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूं। तो शासन क्यों आजकल पिता माता शासन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं करते हैं। आप देखो, आप किसको शासन करते हैं, प्रेम करते हैं। पिता तो बाहर में जाता है, माँ भी नौकरी करने जाते हैं, बच्चा को कोई नहीं देखता है। अभी डांटेगा तो बच्चा बोल तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, तो हमारे जीवन में देखा कुछ, तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। इसीलिए पिता माता की हिम्मत नहीं शासन करने के लिए, भाई हाँ हम तो हमने नौकरी किया, पैसा कमाया, आपको तो टाइम दिया नहीं। इसीलिए पिता माता की हिम्मत नहीं शासन करने के लिए। तो दुनिया अलग हो गया है, पिता माता को शासन करना चाहिए संतान को। संतान को शासन नहीं करेंगे तो किस आगे बढ़ेगा। जब भगवान संतान रूप में था, उनका पिता माता चैतन्य महाप्रभु को उनका पिता जगन्नाथ मिश्र शासन किए थे, कृष्ण को यशोदा में शासन किए थे। ये तो पिता माता का कर्तव्य शासन करना है। और अभी बोला हमको कोई शासन किया नहीं, इसीलिए अभी हम शासन नहीं सहन कर पाते हैं, तो हमें दुर्भाग्य है। यदि शासन नहीं कर पाए, सहन कर पाएंगे तो कभी हमको शासन नहीं किया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिस तरह अब आप IIT में एडमिशन लेना चाहते, कितना बार कठिन एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं, मेरा तो इतना एग्जाम देने की इच्छा नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। आप उतना कठिन एग्जाम नहीं देंगे तो एडमिशन कैसे मिलेगा IIT में। तो इसी तरह शासन नहीं सहन करेंगे तो आगे कैसे होगा। शासन करने का सहन नहीं करेंगे, कोई शासन करेगा नहीं तो कृपा कैसे मिलेगा। हमें शासन करने का हमको अधिकार देना चाहिए, तभी कोई हमको शासन करेंगे। भाई जो जो आप किसी को शासन जो करते हैं, मजा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो जो आदमी हमको शासन करते हैं उनको भी मजा नहीं लगता है। लेकिन हम जो अधिकार देते हैं हमारे मंगल के लिए कुछ करो, तभी शासन करते हैं। तो उनका जरूरत नहीं जो शासन करते हैं, वो हमारे जरूरी है। जिस तरह डॉक्टर जब पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, मजा लगता है उनका, लगता है। सर्जन जब किसी को काटते हैं, मजा लगता है क्या? नहीं। किसको लिए काटते हैं? पेशेंट के भलाई करने के लिए। जब पेशेंट बॉन्ड नहीं देगा, डॉक्टर काट देगा नहीं। काटना तो दूर की बात है, विदेश में आप बॉन्ड नहीं लगते, इंजेक्शन भी नहीं देगा। मेरा थोड़ा काट गया था, मेरा टिटनस लेने के लिए गया था, कितना बड़ा बड़ा पेश भरा के लिखना पड़ा था। उसके बाद मैं कह मेरे पास कितना 100-100 हमें टिटनस दिया था, फिर लिए आदमी को इंजेक्शन दिया। अभी मेरा टिटनस लेने के लिए कितना बड़ा बड़ा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नहीं, आप इसको लिखो कहाँ से आया, आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड देखो, उसके बाद मैं क्या टिटनस इंजेक्शन दिया। विदेश में कितना कॉशस है, इंजेक्शन दिले कितना बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उनको इंजेक्शन देने मजा नहीं है, लेकिन हमको बॉन्ड देना पड़ेगा कि हमको इंजेक्शन दो। तो इसी तरह दूसरा हमको शासन करो, इसे हमको अधिकार देना पड़ेगा, तभी आदमी शासन करेगा। वो हमारे जरूरी है। प्रूफ पहले हाथी रहे।
हरे कृष्ण। मनोज जी, आप बता रहे थे कि सम्मान की भूख रहती है हम लोगों में, तो इस चीज को एक तो कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे सेवा भी हम करते हैं, मान लीजिए हमें आदेश मिला है वरिष्ठों से, हम सेवा कर रहे हैं, तो कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत मैच्योर कम्युनिटी होता है, तो सम्मान भी कई बार देते हैं, वरिष्ठ भी देते हैं और इक्वल्स,
कोई हमेशा सम्मान देना चाहिए उनको, लेकिन हाँ, हमको नहीं लेना चाहिए।
हाँ, तो हमको भी इस तरह का माहौल ऐसा रहता है, क्योंकि वैष्णव का गुण होता है इतना। हाँ,
तो उस स्थिति में हम कैसे ये जिसको मतलब रखें अपने लिए कि हम
तो करना चाहिए। आप दूसरे को कैसे बंद, इस तरह माधवेंद्र को शमन करना चाहते थे, माधवेंद्र मैं आज सुबह उठ जाऊंगा, सुबह उठ सब तो आएगा मेरे पास, भाई आप इतना बड़े भक्त हो, गोपीना आपके लिए खीर चूरी किया, सब तो सम्मान करेगा, तो माधवेंद्र पूरी कैसे बंद करेगा सबको मुख। खुद ने भाग गया था, भाई मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, कोई किसी को नहीं सुनना चाहते। ये तो वैष्णव का काम है, जिस तरह किसी के लिए खीर चूरी किया भगवान, कि सारे भक्त लोग प्रशंसा करेगा नहीं उनको, ये तो वैष्णव का काम है प्रशंसा करना। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने सोचा मैं जो सुनूंगा मेरा अहंकार के कारण पतन हो सकते, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले चलता हूँ। लेकिन माधवेंद्रपुरी पूरी जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले खबर उधर में चले गया, वह जाने का आप माधवेंद्रपुरी किया, आपके लिए गोविंद खीर चूरी किया था, तो सुनना पड़ेगा उनको, कैसे बोल सकते हैं नहीं नहीं मैं तो सुनना नहीं चाहता हूँ, आप क्या करो, सुनना पड़ेगा। ये वैष्णव का काम है दूसरा का महिमा कीर्तन करना, लेकिन हमें देखना हमें कितना लेना नहीं लेना है। हमको जो प्रशंसा करता है हमें पता है, आज इस्कॉन के साथ नहीं जुड़ते थे हमारे हालत क्या होता था, हमारे जो पहले जो काम किया उसको सारे काम यदि एक लिख के बोर्ड में रख देगा तो किसी को मुख नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए जो प्रशंसा करा प्रशंसा पाने का उम्मीदवार है क्या, तो दूसरा आदमी नहीं जानते है, बंगला में बात है, मोने जाने पाप माए जाने बाप। मेरा माँ जानता है मेरा बाप कौन है, और मेरा मन जानता है मैं क्या क्या पाप किया। बाप मीन्स फादर, माए जाने बाप, मेरा माँ केवल जानते है मेरा बाप कौन है, और इस तरह मेरा मन केवल जानता है मैं क्या क्या पाप किया, दूसरा आदमी नहीं जान सकते, मैं तो जानता हूँ क्या क्या क्या। तो आदमी कोई प्रशंसा करेगा करने दो, उनको काम उनको करने दो, लेकिन हम तो जानते हम क्या क्या।
और महाराज जी ये जो अभिलाषा होती है सम्मान की अभिलाषा, इसके लिए हम मतलब हमारी स्थिति में हमको कैसे प्रयास करना चाहिए कि हम उस चीज में ना भटकें और सेवा प्रमाणिक रूप से कर पाए एक सही भावना से उसको।
क्योंकि आप जानना चाहिए प्रशंसा है जहर की तरह है, ये प्रशंसा यदि स्वीकार करेंगे ये जहर की तरह काम कर आध्यात्मिक मृत्यु होगा, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आदमी तो कर देगा लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए, और हमारे है नहीं ये जो अभी सम्मान मिल रहा है, जितना सम्मान मिल रहा है ये लेक्चर देखे आदमी ये जो बातें कर रहा है किसका बात है, पूर्वोत्तर में आचरण में दिया हुआ बात है, जो कुछ है ये सब जो सम्मान है सब पूर्वोत्तर आचार्य का संपत्ति है, उनका संपत्ति हम प्रेजेंट कर रहे हैं एज इट इज। तो पूर्वोत्तर कहता है यदि सम्मान है हमारे क्रेडिट है उतना केवल एज इट इज देने का कोशिश कर, बाकी जो कुछ है तो पूर्वोत्तर आचार्य का चीज है। लेकिन यदि हम लेना चाहते हैं तो हालत क्या का पता है, आप तो सब साइंस के स्टूडेंट है, हीटर में आग कब जलते हैं, हीटर से खाना बनाते हैं ना आप लोग, अच्छा बल्ब क्यों जलते हैं बताइए, बल्ब क्यों जलते हैं, फिलामेंट के कारण, तो क्यों जलते हैं, रेजिस्टेंस, जो करंट आ रहा था वो नहीं जा पा रहा था, इसीलिए जब हीटर जो खाना बनाते हैं वो आग क्यों जलते हैं, वह पे रेजिस्टेंस, जो आग करंट आ रहा था पास नहीं कर पा रहा है। तो उसी तरह जो हमें प्रशंसा कर रहा है ये भगवान के पास जाना चाहिए तो नहीं दे रहा है, हमारे पास रख दिया तो रेजिस्टेंस जल जाएगा।
जैसा कि आपने बताया कि जैसे आप बताया कि हमारा पिछला रिकॉर्ड बड़ा खराब रहता है इसको से आने से पहले है, और
सबको नहीं हमारा है
सॉरी तो मतलब किसी तरह भक्ति में मतलब भगवान की कृपा भक्तों की कृपा से आ गए हम, और हमें सब वैष्णव ही बोलते हैं जब बाहर जाते हैं कुर्ता धोती में तो बहुत, और आज क्लास में भी सुने कि वैष्णव मतलब उनका ग्लोरी सुनने के बाद मतलब
सब लगता है कि कितना बड़ा बात है, तो हम कभी मतलब इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है।
इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के वो कितना बड़ा वक्त में
नहीं, मतलब लगता है कि मैं तो वैष्णव के रास्ते में आ गया हूँ लेकिन हूँ नहीं अभी। हाँ। कभी कभी परेशानी भी महसूस होता है कि मतलब वैष्णव का मतलब बहुत घाय होता है लेकिन हम कर नहीं पाते, तो हमारा मतलब शुरू से उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे मतलब कैसे निकलना चाहिए, कैसे?
ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इन्फेरिटी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। ये तो समझना चाहिए। हाँ, जिस तरह ये जो पानी पीने के लिए योग्यता क्या है, ये पानी पीना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? हाँ,
ग्लास उठाना चाहिए।
क्या करना चाहिए आप बदल दो उनको, पानी पिए थे ये बदल दो उनका, पानी पियो, क्या करना चाहिए? ये पानी पीने के लिए क्या करना चाहिए आपको? पी लीजिए कतरा देख लीजिए। ये बोतल को आपसे मुख से ऊपर रखना पड़ेगा तभी जाएगा, ये बोतल को ऊपर रखना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा, जब आप नीचे नहीं आएगा तब अंदर में कुछ नहीं जाएगा। तो ये पानी को जितना ऊपर उठाएंगे आप, जितना नीचे जाएगा उतना फोर्सफुली अंदर में जाएगा। तो यदि आपको अंदर में घुसना चाहता है तो नीचे जाना पड़ेगा, और जिसके पास लेंगे उसको ऊपर रखना पड़ेगा तभी अंदर जाएगा। ये इन्फिनिट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये पानी खाने पीने का यही प्रिंसिपल है। आप पानी पीने जाते हो तो नीचे आना पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो वैष्णव के पास कुछ लेना चाहते हो उसके विनम्र रूप में, विनम्र तभी उनका कृपा आएगा।
महाराज मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं, मतलब बड़ाई करते हैं कि वैष्णव है आप लोग, मतलब जब बाहर जाते हैं तो सुनते हैं
प्रशंसा करते हैं,
बहुत प्रशंसा करते हैं,
तब और तब समस्या क्या?
नहीं तो लगता है कि हम तो वैष्णव है,
वैष्णव हो गया। ये प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमी तो वैष्णव यही अभिमान होले अमानी ना हब आमी, प्रतिष्ठा आशिया हृदय दुषीबे होइब निरय गामी। यदि आप मन से समझेंगे मैं वैष्णव हो गया, आमी तो वैष्णव, मैं तो वैष्णव हो गया, यही अभिमान होले, इस तरह यदि अभिमान होगा मैं वैष्णव हो गया। सर्वश्रेष्ठ कौन है दुनिया में? विष्णु और वैष्णव। तो वैष्णव हो गया आप तो क्या है, सर्वश्रेष्ठ बन गया। तो आमी तो वैष्णव यही अभिमान होले, मैं वैष्णव बन गया, इस तरह यदि अभिमान होगा अमानी ना हब आमी, तब अमानी नहीं होगा, अमानी हबो ना हबो मनीष अमानी ना हबो आमी, मैं अमानी नहीं बन सकते, इसका अर्थ क्या है? मैं अमानी नहीं बन सकते, इसका अर्थ क्या है? अमानी शब्द अर्थ क्या है? मान नहीं जाता है अमानी, तो मैं अमानी नहीं होऊंगा, इसका अर्थ क्या है? हाँ, मैं मान चाहूंगा, क्योंकि भाई मैं वैष्णव हूं। जिस तरह मान लीजिए आप गुरु है, आपको शिष्य आपको प्रणाम नहीं करेंगे तो आपको क्या लगेगा, भाई इसके तो नरक जाएगा, मुझको प्रणाम नहीं कर रहा है, बात सही कि नहीं? आप गुरु है आपको प्रणाम नहीं करेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये तो नरक जाएगा, सिखाना चाहिए मुझको। तो उसी तरह आप जब समझ गए मैं वैष्णव हो गया, दूसरा आदमी इतना बड़ा वैष्णव को सम्मान नहीं करे तो नरक जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ मुझको सम्मान करना चाहिए। तो अमानी नहीं बन सकते, यदि आप समझ गए मैं वैष्णव हो गया तो अमानी नहीं बन सकते, यदि अमानी नहीं बन सकते तब क्या रिजल्ट, नेक्स्ट स्टेप प्रतिष्ठा आशिया हृदय दूषी भी, तो प्रतिष्ठा लाभ करने का वासना होगा और हृदय कलुषित होगा, होइबो निरय गामी, तब हम नरक में चले जाएंगे। इसलिए कभी नहीं सोचना हम वैष्णव बन गया, आदमी बोलेगा आदमी को काम करने दो, प्रशंसा करो, उनका विनम्रता है, उन्होंने जानते नहीं है हमारा असल परिचय, हाँ नेकेट सीन वो नहीं जानते इसलिए प्रशंसा कर रहा है, उनको करने दो, लेकिन मैं तो जानता हूँ मैं कौन हूँ।
महाराज मतलब क्वेश्चन था कि मतलब बनना चाहते हैं लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ दिन सुपरफिशियल प्रैक्टिस के कारण दिखता है, फिर हम वही नेचुरल में आ जाते हैं। तो मतलब वैष्णव बनने के लिए क्या मूल मूल रहस्य क्या है, मतलब हमारा मूड कैसा होना चाहिए, मतलब किस कैसे क्या करना चाहिए कि हमेशा हमेशा लगे कि हम वैष्णव वैष्णव तक
वैष्णव भक्त संगति में भक्त का संग में रहना, जिस तरह प्रभुपाद के साथ रहना चाहिए, कैसे लगते हैं भाई इस तरह जितने वैष्णव बन सकते हैं, जिस तरह सारे दुनिया में वैष्णव क्यों हुआ प्रभुपाद का देख कर, इतना अच्छा आदमी होता है क्या, वैष्णव बनने इतना अच्छा बनता है, इस्कन में आकर आदमी कृष्ण भक्ति कर रहा है क्योंकि इस्कन का भक्ति दिखे, इतना अच्छा है आदमी हम वैष्णव बने। वास्तविक वैष्णव का मूल चीज है वैष्णव का संग करना, और उसका कहता है ABC ए एसोसिएशन, बी बुक्स स्पेशली प्रभुपाद बुक, सी अर्थात चैंटिंग, ए है साधु संग, दूसरा ग्रंथ दैन प्रभुपाद का ग्रंथ चैंटिंग, चौथा विग्रह अर्चन भगवान के सेवा करना आरती में अर्चन करना, और पांचवा है धामवास इस तरह पवित्र जगह में निवास करना। जिस तरह मंदिर में जब आते हैं कितना अच्छा परिवेश होता है, तो इसको में आने से सब मिलता है, सब एसोसिएशन मिलता है। ठीक है, डन। समन कंट्रोल रीजन ओके। हाँ पूछे
एक्चुअली सबने जो सवाल पूछे वो सारे मास्टर्स लेवल से PhD लेवल के थे, मेरा अपना UKG LKG फर्स्ट स्टैंडर्ड का सवाल है।
सवाल
नहीं
किया,
नहीं मतलब सभी ने जो सवाल पूछे वो हाई लेवल के थे, जैसे मास्टर्स या PhD बोलते हैं उस लेवल के थे, मेरा अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलिस क्वेश्चन है। दो पहला सवाल ये है प्रभु जी की अगर कोई एकदम न्यू है एलिमेंट्री है, जैसे कि जो खाता है उसको ये कुछ नहीं, अभी भक्ति में जुड़ने के इसमें है आ रहा है, तो जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया कि सपोज कोई एकादशी का उपास है, तो अगर वो कोई फास्ट कर नहीं रहा था कुछ नहीं कर रहा था, तो भले अगर प्रशंसा मिल रही है इससे वो फास्ट कर रहा है, अगर वो पर्पस बन रहा है लेकिन किसी कारणवश फास्ट कर रहा है, तो क्या ये सही है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि प्रभु जैसे हनुमान जी का आपने एग्जाम्पल किया कि हनुमान जी ने लंका जलाई लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के सुख के लिए, ना कि खुद के इसके लिए। साथ ही में अर्जुन का भी वैसा था, उन्होंने युद्ध किया प्रभु भगवान गोपाल श्री कृष्ण की इसके लिए, या फिर उस क्लिपिंग में भी यहाँ पे दिखाया था कि भगवान श्री कृष्ण गीता के एंड में अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम्हें अब मैंने तुम्हें तो सारी भगवत गीता समझा दी, अब तुम्हें जो सही लग रहा है वो तुम करो, फिर भी अर्जुन कहता है कि मैं वही करूंगा जो आपने मुझे कहा था। यानी कि इसका कंक्लूजन ये था कि आप कह रहे थे कि लीव अ गॉड सेंट्रिक लाइफ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर मैं गॉड सेंट्रिक लाइफ लिव करने के लिए डिटरमिन्ड होकर कर रहा हूं, तो कहीं अनजाने में मुझ में वो अहंकार आ सकता है क्या कि मैं भगवान के प्रत्यर्थ कर रहा हूं, तो अगर मैं वो अहंकार नहीं पकड़ता हूं तो मैं एलिमेंट्री लेवल पे हूं तो मैं मुझसे वो कार्य नहीं होगा, और अगर मैं वो अहंकार पकड़ के कार्य कर रहा हूं कि मैं भगवान के प्रति वो कार्य कर रहा हूं, तो वो भगवान के प्रति कार्य करना एक्चुअली सब उसी के कृपा से चलता है, पर मैं कर रहा हूं ये जो अहंकार मुझ में जनरेट होगा तो वो क्या वो सही होगा? ऐसे दो सवाल।
वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एलिमेंट्री नहीं PhD लेवल का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ ये भावना रहते हैं। हाँ जिस तरह एक बार अंगद रामचंद्र के पास गए थे रामचंद्र का संदेश लेकर, तो रावण बहुत ऊंचा सिंहासन में बैठा है, बैठ के बात कर अंगद बात कर रहा है, तो अंगद सोचे एक बदमाश है इनके साथ में बात करूंगा ऊंचा सिंहासन और मैं रामचंद्र का रिप्रेजेंटेटिव मैं नीचे खड़ा के बैठ कर बात करूंगा, तो कोई सिंहासन भी नहीं दे रहा है बैठने के लिए, तो उन्होंने पूछ इस तरह घुमा के ऊंचा सिंहासन बना के ऊपर से बैठ के बात करना चालू किया, भाई मैं रामचंद्र के राशि हूं। तो ये हम कर अच्छा, हम भगवान का दास है ये अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भक्त भी सोचते हैं मैं दास हूं लेकिन और बहुत बड़े बड़े दास है, मैं उतना बड़ा नहीं हूं, क्योंकि अहंकार होने से रामचंद्र को जाकर वो हनुमान के रावण के पास ठीक है, लेकिन रावण रामचंद्र आके बोलेगा मैं आपका सबसे बड़े भक्त हूं, तब रामचंद्र क्या बोलेंगे? इसीलिए वो अभिमान तो है कि हम भगवान के भक्त है, लेकिन अहंकार यदि होगा मैं बड़ा भक्त हूं तो भगवान वो सहन नहीं करते। तो ये दोनों ही बैलेंस रखना। हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति में आगे जब बढ़ते हैं तो लगता है नहीं मैं अभी शुद्ध भक्त हूँ, आगे वो बहुत बढ़ना है, कोई प्रशंसा करेगा, लग रहा है मैं इस तरह सुनूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जिस तरह मान लीजिए जब आप ओलंपिक में रेस देखा, हाईलाइट देखा कभी, मान लीजिए फाइनल रेस में 50 आदमी भाग रहा है तो जो एक आदमी केवल देख रहा है एक नंबर को और एक आदमी देख रहा है केवल 50 नंबर को, कौन कहां पर है? जो एक नंबर को देख रहा है वो कहां पर? वो दो नंबर में खड़ा है, कब मैं एक नंबर का क्रॉस करूंगा? और जो 50 नंबर को देख रहा है वो कहां पर? वो 49 में है खड़ा है कि कम से 50 तो नहीं बनूंगा। वो 49 वाला एक नंबर को देखने हिम्मत नहीं है, वो क्या बोलते 50 कम से कम एक आदमी को पहले होना चाहिए। तो वैष्णव जगत में इस तरह है। हमें जब वो सबसे टेंशन किसका है? 49 वाला का नहीं, सेकंड वाला का है, उनका टेंशन नहीं, एक नंबर बनना है उसको ज्यादा टेंशन है। कैसे? हाँ, कोई उसी जाकर प्रशंसा करेंगे, भाई आप तो बहुत कुछ कर लिया। बोले नहीं, शून्य का टाइम नहीं मरा, एक नंबर बनना है। तो इस तरह वैष्णव इसी तरह होता है, कोई प्रशंसा करेगा नहीं, हाँ भाई ये सुनेंगे हमारे पतन हो सकते, लेकिन हमें आगे और जो बहुत बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। ओके,
हरे कृष्ण महाराज। मेरा प्रश्न है कि मैं भगवान की कृपा से मेरा जन्म एक डिवोटी फैमिली में हुआ है, पर अब मैं कॉलेज में जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं तो वो ये करते हैं कि तेरी लाइफ बोर है, तू सुबह जल्दी उठता है, जॉब करता है और भगवान की सेवा करता है, नॉनवेज नहीं खाता, प्याज लहसुन नहीं खाता। तो मेरे दोस्त अब आए हैं पर वो बाहर है, ऊपर मंदिर हॉल में है और मैं अंदर हूँ, अभी वो इधर नहीं है, बाहर है वो। सो माई क्वेश्चन इज हाउ शुड आई कन्विंस देम टू कम विथ मी एंड टेल देम दैट वॉट इस्कॉन इज वेरी गुड एंड इट हेल्प्स।
पहले मैं पूछूं, आप कन्विंस किए इसके बाद में?
नो,
आप फुल्ली कन्विंस?
यस, आई एम कन्विंस।
अच्छा, अभी उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे होगा। हाँ, कभी कभी रसगुल्ला, जो रसगुल्ला है कैसे समझाओगे उनको? जब तो खिलाओगे नहीं कैसे समझेगा वो? तो आओ जो मजा में है वो कैसे समझेगा?
आज वो मंदिर में आए हैं पर वो बाहर है।
हाँ, तो इसीलिए जो रसगुल्ला नहीं खाया तो समझेगा कैसे? उसकी यहां तक लाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे, हाँ तो धीरे धीरे होगा इतना, क्योंकि और जो मंदिर तक आ गया है तो जरूर उसके अंदर कुछ तो टेस्ट मिला है, नहीं ये तो क्यों आया? तो भाई एक बहुत खुशी है, नहीं तो जिस तरह जाओगे। है तुम्हारा फ्रेंड इधर में है?
हाँ, बाहर है।
अच्छा, है नहीं तो उनको पूछो तुम्हारे कितना फ्रेंड है, मेरा कितना फ्रेंड है, एक बार पूछना। दूसरा पूछना है, हम जो खाते हैं आपको जीवन में 14 पुरुष इसका नाम सुना कभी? खाना दूर सुने कभी ना? और हमें हमारे जो हम जो जगह जाते हैं, जितने एटमोसफेयर है सब छूते मंदिर के, उनके इस तरह के जगह है जाने का? तो उनके पास है क्या? उनके पास चार चीजें पाप कर्म करने के लिए फ्री है, ये सुन के उनको है क्या? बस हमारे पास कौन सा नहीं, चार पाप कर्म छोड़कर कौन सा चीज हमारे पास नहीं है? आपको पास नहीं बताइए एक चीज, चार पाप कर्मों को नहीं करना, यह सोच के कौन चीज आपके पास नहीं? क्या बोर लगने वाली चीज है? लेकिन आ जाएगा। उसको प्रीचिंग इज आर्ट, उनको प्रेम से समझना, दाई पहले नहीं समझेंगे, जब आएगा देखेंगे। अभी आपको पता नहीं क्योंकि आपके भक्तों के घर में ना, आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरा जो है जो भक्त घर में नहीं है उनको आने के पहले सबके सेम स्थिति था। गोपीनाथ भट्ट गोपीनाथ आचार्य के साथ जब सार्वभौम भट्टाचार्य के चर्चा हो रहा था, सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं मानते चैतन्य वो भगवान, तो गोपीनाथ आचार्य बोले चैतन्य वो भगवान, तो सलार बनाई झगड़ा हो रहा है एक प्रकार। तो कोई के तो कम बड़ा पंडित नहीं है, सार्वभौम हारने वाला नहीं है। तो लास्ट में गोपीनाथ आचार्य कहता है अभी मैं जिस तरह बात कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, जब महाप्रभु का आपका प्रति कृपा होगा आप भी दूसरे को समझाने के लिए इस तरह बातें करोगे। तो अभी जो आपका फ्रेंड नहीं आ रहा है तो दो दिन बाद आपके तरफ भी बात करेगा, दूसरे को समझाएगा। ये इस्कॉन है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ये जो आएगा सबको किसी वक्त खाना पड़ेगा, सो नहीं सकते। हरे कृष्ण। पूरा गाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, 9 बज गए। साजिलो अर्जुन जुन माया बद्ध न तेरो नयो होइलो पांडव सदा आत्मीय सजन हिंसा बड़े राज्य भो किबा सुख पार्थ देखाइला सो सही तो देहात्म बुद्धि आत्मीय ज्ञान करे क्षत्रिय होइया स्नेह युद्ध क्षेत्र छारे मोह देखि कृष्ण तार करिलो निंदन अतएव अर्जुन कइलो शिष्य तरह शिष्य होया करे जे गीतार श्रवण घुचिबे अज्ञान संसार बंद संसार
সংসার ঘুচিল কিন্তু বাজে নেশি নাই, গীতার তাৎপর যে গৃহী এ রূপ বুঝায়, করি সে বচনং তবা সেই মন্ত্র সিদ্ধি, অতএব যুদ্ধে তার হল যশ বৃদ্ধি, বৈষ্ণব নিরীহ সব মালা জপ করে, এক বৈষ্ণব অর্জুন সংসার ভিতরে, নিদন্দ বৈষ্ণব শুধু জপ করে মালা, বলয়রূপ যারা খায় মন কলা, বৈষ্ণব নিরীহ অকৃত্র হয় তো স্বভাবে, কিন্তু নহে হীন বীর্য যথা লোক ভাবে, ভারতের দুই যুদ্ধে দুই মহা সায়, ভারতের বৈষ্ণবের অগ্রণী তারা করিল বিজয়, নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি বাঞ্ছায় যুদ্ধ নাহি করে, বৈষ্ণব বলিয়া তাই বিদিত সংসারে, বৈষ্ণব না দেখিয়া বলে বৈষ্ণব নিষ্ক্রিয়, वैष्णव प्रभुर सेवाय सदाय सक्रिया प्राणहीन कनिष्ठ सेई सेवा नाही करे प्रतिष्ठार तरे थाके निर्जनेर घरे वैष्णव प्रणम शिला नित्यानंद राय मार खाय प्रेम दाय जतायो तथा चक्र पानी गौर हरि सेता करिलो सा सन्त वैष्णव विदेशी तबे होइल दल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद जय प्रभु पद जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, पति पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद विरचित वृंदावन भजन की, सावित गौर भक्त वृंदा की गौर प्रमन। हरे कृष्ण।
इस होली रेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की।
प्रभुपाद आप लोग वॉइस में इसको लगा सकते, जो भक्त सेवा नहीं करना चाहते हैं उसको दिखाने के लिए।
प्राण ही ना कनिष्ठ से ही सेवा नहीं करे। सो बाय दिस एक्चुअली महाराज Maharaj has a very special gift to the ISKCON movement by sharing the Vaishnav songs, the purports, and all these wonderful songs that Srila Prabhupada wrote. We never have heard the song itself, and how to digest them with practical examples, analogies as Maharaj presents. They are so lucid, simple examples and very striking, and we are very blessed that Maharaj comes and shares this wisdom with us. His realizations are sweet, simple and very profound. We are very grateful to Maharaj. Let us all thank Maharaj by three times loudly chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.